वो के अंदर तलमिला गया है और ये इसके नेत्र लाल हो गए हैं और ये अब क्रोध के अंदर सारी बांदी सेना का नाश करने वाला है। तब राम जी महाराज बड़े वेग से उसके सामने आकर खड़े हुए और जितने वानर उसके पास में थे उन सब के मन में हर्ष करते हुए राम जी महाराज ने धनुष के ऊपर धनुष की डोरी थी डोरी का टंकार किया। टंकार करने से वानर लोग आश्वस्त हो गए और उस समय राम जी महाराज ने उसके ऊपर बाण रखा। सारे वानर उस समय में राम जी के बाण की प्रतीक्षा कर रहे थे और भगवान ने कुंभकर्ण के ऊपर निशाना लगाया। कुंभकर्ण मंध्याचल के समान मंदराचल पर्वत के समान बड़ा बड़ा जो है बलवान उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा है। बानर लोग देखने लगे कि राम जी अब इस बाण को छोड़ेंगे तो राम जी महाराज ने वो बाण लिया और कान तक उसको ताना। राम जी महाराज के धनुष की टंकार को वो सह नहीं सका और वो राम जी की तरफ दौड़ा दौड़ा आया। जब वो दौड़ रहा था तो ऐसा लगा कि कोई वायु का तूफान आता हो जैसे बतूलिया आता हो ऐसे वो लगा दिखाई दे रहा था। राम जी ने भरे युद्ध के अंदर कुंभकर्ण को कहा आओ आओ आगत रक्षो दीपमा विषादम अवस्थितो हम प्रगृहीत चाप है अवे हिमाम राक्षस वंश नाशनम यस्वम मुहूर्ता भविता विचेता। आओ राक्षस आओ कैसे तुम मौत के सामने दौड़े दौड़े चले आ रहे हो। देखो मेरा धनुष के ऊपर लगा हुआ बाण तुम्हें निशाना लगाए हुए है। सारे राक्षस वंश का नाश करने में तुम महाकारण हो कुंभकर्ण लो हमें बाण छोड़ता हूँ। रामोयम इति विज्ञाच्छा यही राम है। मैंने तो देखा कि कोई बंदरों के अंदर से कोई सेना में कोई होगा यही राम है। इस प्रकार से वो कुंभकर्ण भी जोर से चिल्लाया चिल्ला के कहा ए राम तुमने हमको मजाक समझ ली है। तुमने देखा होगा कि जैसे विराट है वैसा ही कुंभकर्ण है। मैं विराट नहीं हूँ मैं कबंध नहीं हूँ मैं खर और दूषण नहीं हूँ मैं बाली नहीं हूँ मैं मारीच नहीं हूँ मेरा नाम कुंभकर्ण है। जब मैं अपने हाथ में मुदगर लेकर के शत्रु के ऊपर आक्रमण करता हूँ उस समय देवता भी मेरे सामने नहीं ठहर सकते। तुमने मेरे नाक और कान को भग्न देख करके मेरी अवज्ञा करके और तुम मेरे सामने शस्त्र चलाना जानते हो शस्त्र चलाने का साहस करते हो ये खड़ा कुंभकर्ण तुम्हारे सामने दिखाओ तुम्हारा कोई पराक्रम जहाँ छिपना है वहाँ चले जाओ कहीं तुमको स्थान नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा क्या तुम्हारे पास पुरुषार्थ लगाओ बाण तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति लगाओ। कुंभकर्ण के वचनों को सुनकर के राम जी महाराज ने अपने जो बाण थे वो दनादन दनादन बाणों की वर्षा की है। लेकिन क्या बताएं वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं न चुप चुभे न व्यथते सुरारी कोई उसके फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कस के बाण लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो सावधानी से सुनना हो कहते हैं जिन बाणों के द्वारा भगवान ने 7 साल के वृक्षों को बींद दिया था जिस बाण के द्वारा भगवान ने बाली को मार दिया था ऐसे वज्र के समान कठोर बाण कुंभकर्ण के शरीर पर लग करके ही नीचे फालतू गिर जाते थे जैसे किसी के मिट्टी लगी और झाड़ने से नीचे उतर जाए तिनका लग गया उतार दिया तो तिनका जो है वो नीचे उतर गया ऐसे वो बाण तिनके के समान लग करके नीचे उतर जाते थे। इस प्रकार से राम जी महाराज ने देखा कि भाई है तो ये बड़ा विलक्षण बहुत ही विलक्षण ये पराक्रमी रावण है ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। तब उसने भाई राम जी महाराज के शरीर के ऊपर मुदगर का प्रयोग किया अपना मुदगर उठाया है मुदगर उठाया जो बहुत बड़े भारी लोह का था। उस मुदगर को उठा करके राम जी की तरफ मुंह फाड़ करके और दौड़ा दौड़ा आकर के और उसने मुदगर को उठे यूं फेंकना चाहा पूरी ताकत लगाई लेकिन राम जी महाराज ने उस समय अपने पास वायव्यास्त्र था। ये वायव्यास्त्र लेकर के राम जी महाराज ने उस बाण को जोर से सनसनाता वो बाण फेंका, उससे उसकी भुजा कट गई। भुजा कटने से वो मुदगर था वो पीछे, वो मुदगर जो है छूट गया। अब इससे कुंभकर्ण बड़ा क्रोध में आया, उसके एक हाथ रह गया, लेकिन उसके मन का साहस और ज्यादा बढ़ गया। वह जब हाथ उसका गिर के पड़ा था, उस समय में उसके हाथ के पड़ने से बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई, राम जी की बंदर नष्ट हो गए। राम जी ने सोचा क्या करें, बताओ। वे जो बेचारे बंदर वहां बचे थे वो देख लगे, रे कुंभकर्ण के पास ही मत खड़े रहो, इसका यदि कोई भी शरीर का अंग गिरेगा तो हम ही बिना मतलब मर जाएंगे। तो वो जगह बहुत दूर की उन्होंने खाली करना चालू कर दिया, छोड़ो भाई दूर हटो। अब उस समय में उसने एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ा, बंदर तो भाग गए और कुंभकर्ण का एक हाथ टूट गया। एक हाथ के टूटने पर भी उसने अपने दूसरे हाथ से एक ताड़ के वृक्ष को, बाएं हाथ से ताड़ वृक्ष को उखाड़ लिया। ताड़ वृक्ष को उखाड़ करके और ताड़ वृक्ष को लेकर राम जी की तरफ दौड़ा। राम जी महाराज ने उस समय ऐंद्रास्त्र लिया, ऐंद्रास्त्र का निशाना लगाया तो ऐंद्रास्त्र सीधा जाकर उसके यहाँ भुजा में लगा और वो हाथ उसका गिर गया। दोनों भुजा उसकी कट गई। दोनों भुजाओं के कटने के बाद राम जी महाराज को ये विश्वास हो गया, अब ये शस्त्र वगैरह तो नहीं फेंक सकता। तो उसी समय में राम जी ने दो अर्ध चंद्राकार बाण, यूं ऐसे यूं और यूं बाण, अर्ध चंद्राकार बाण थे, वो अर्ध चंद्राकार बाण लेकर के जल्दी से जल्दी उसके एक 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 यहाँ बाण लगाए पैरों पर, तो भाई उसके दोनों पैर थे वो पैर भी कट करके फट गए। दिशाओं में बड़ा आनंद छा गया। आकाश में रहने वाले देवता ऋषि गंधर्व सबके मन में बड़ी प्रसन्नता होने लगी। परंतु अभी भी कुंभकर्ण के पास में एक चीज और थी, वो था उसका मुंह। और अपना मुंह बहुत जोर से उसने फाड़ दिया और ऐसे करके वो सांस लेने लगा। सांस लिया, उसके मुंह के अंदर इतनी ललाई थी जिसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुंह के अंदर दावानल हो गया हो, समुद्र में कभी आग लगती हो, पानी में भी आग लगती हो, ऐसे वो दिखाई देने लगा। और सांस लेकर के राम जी की तरफ दौड़ा। जिस प्रकार से राहु चंद्रमा की ओर दौड़ता है, ऐसे वो कुंभकर्ण राम राम की तरफ दौड़ा। तो राम जी महाराज ने बड़ी कुशलता से खुले हुए मुंह में बाणी बाण बाणी बाण भर दिए और उसका मुंह बाणों से भर गया। संपूर्ण वक्रो नल शशाक वक्रम, अब मुंह तो बाणों से भर गया, अब सांस सांस ले रहा था, सांस तो नाक से भी ले रहा था, परंतु उसका मुंह एकदम बाणों से भर गया। तो भाई अब कुछ बोल नहीं सके और वो मूर्छा चापी, वो मूर्छा को भी प्राप्त होने लगा। इस प्रकार से जब वो घायल अवस्था की ओर प्राप्त हुआ, उस समय में भगवान ने सूर्य के समान दे दीप्यमान चमकीला बाण दिया। वो बाण ऐंद्र बाण था, वो बाण विनाशकारी बाण था, वो बाण कभी व्यर्थ में जाने वाला नहीं था। वो बाण लेकर के और वो जो बाण बड़ा सोने का था, उस बाण के अंदर से सूर्य के समान किरणें निकलती थी और वो महेंद्र के इंद्र के वज्र के समान बड़ा कठोर था। राम जी ने उस बाण को धनुष के ऊपर रखा और राम जी ने मन से कुछ चिंतन किया। राम जी ने एक बार दसों दिशाओं को यूं देखा, देखने के बाद फिर निशाना लगा करके और वो बाण भगवान ने बड़े कस करके छोड़ा, सीधा वो बाण गया और जाकर के कुंभकर्ण के गले में लगा और कुंभकर्ण का सिर वहीं पर कट गया। कुंभकर्ण का सिर कट करके सीधा लंका की तरफ, लंका में चला गया। कुंभकर्ण का सिर था वो भाई कुंडल से युक्त था, कानों का कुंडल उस पर लगा हुआ और उससे ऐसा लगा कि जैसे रात्रि में कोई चंद्रमा उग गया, अब काला काला मुंह और ये कुंडल ये थे तो मानो चंद्रमा रात्रि में, दिन में तो सूर्य और रात्रि में चंद्रमा ऐसा दिखने लगा। राम जी के बाण से मरा हुआ ये राक्षस लंका के अंदर जब उसका सिर आकर के गिरा तो बड़ा जोर से वहां पर धमाका हुआ। प्राकार मुच्चम तमाप तमापातयच्च, बहुत जोर से गिरने से धमाका हुआ और बाकी जो धड़ था उसका धड़ था वो भी उछल करके जाकर सीधा समुद्र के अंदर पड़ गया। इस प्रकार से ब्राह्मणों का देवताओं का शत्रु कुंभकर्ण जब भगवान के बाणों से मारा गया तो आकाश में देवताओं ने भू प्रभु मात्रा में दुमदमिया बजाया। आप देवता ऋषि महर्षि पन्नाग सिद्ध चारण कुया यक्ष गंधर्व आकाश में आकर खूब हर्षित होने लगे और हर्षित होकर के बार बार सियावर रामचंद्र की, इस प्रकार से वो जय जयकार करने लगे। विनेद रुच्चै व्यथिता रघुत्तमम हरिम समीक्षैव यथा मतंगजाः, इस प्रकार से भाई राम जी महाराज के दर्शन करके बड़े आनंदित होने लगे। एक बहुत बड़ा अंधकार नष्ट हो गया। राहु के मुख से जिस प्रकार सूर्य मुक्त हो जाता है सबके मन में प्रसन्नता होती है, इस प्रकार से आज कुंभकर्ण के चंगुल से राम जी छूट गए, ऐसे राम जी सबको प्रसन्न कर रहे हैं। सब बानर उस समय बड़े हर्षित होकर के अपनी पूंछ से है वो पटकने लगे। बानर लोग तालियां बजाने लगे। बानर लोग बड़े हर्षित हुए, दौड़े दौड़े आए राम जी के पास, आए अंगद जी के पास, आए चारों तरफ से राम जी को घेर लिया। और भाई जब इस प्रकार से राम जी महाराज के पास बंदर लोग आए, अंगद के साथ बात चली तो अंगद ने कहा, अंगद से कहा, अरे अंगद तुमने बड़ा अच्छा कहा, हमको रोक लिया, नहीं तो हम हमारे आज भग जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। इस प्रकार से कुंभकर्ण को जब उन्होंने सद्गति प्रदान कर दी तब सब बड़े आनंद में डूब गए। ननंद हत्वा भरताग्रजो रणे महासुरम मित्र मराधिप, राम जी महाराज के चेहरे पर अपार प्रसन्नता है। वही तेज वही प्रसन्नता वही राम जी महाराज के मन में उत्साह, सब बांदर राम जी की तरफ विराजमान है। इधर रावण के पास में खबर पहुंची कि महाराज की जय हो। क्या हुआ कुंभकर्ण का क्या पराक्रम? राम और लक्ष्मण तो मर गए होंगे, सुग्रीव धूल चाट रहा होगा और वो लंका को जलाने वाला हनुमान उसका कुछ पता ही नहीं होगा। शाबाश वीर कुंभकर्ण, शाबाश, तुम्हारे जैसे भाई के रहते मुझे क्या चिंता है। बोलो क्या सुनाना चाहते हो? लो लो तुम मुझे कुछ सुनाओगे, लो ये हार ले, ये सोना ले, ये मोती ले, ये ले, वो ले। महाराज मैं कुछ और ही सुनाने आया हूँ, क्या सुनाओगे तुम? और तुम और मुझे क्या सुनाओगे? राम मर गए तो लक्ष्मण मर गए, हनुमान मर गए, सुग्रीव मर गए, इसके अलावा हमको और क्या सुनाओगे? तुम्हारे पास क्या सुनाने की बात? महाराज बड़ी दुख की बात है, क्या हुआ गया? कौन सा दुख हो गया? राम के मरने से कोई दुख हुआ कि हमको सुख हुआ? लक्ष्मण और सुग्रीव के मरने पर दुख होता है कि सुख होता है? हमारे लिए बड़ा सुख का समाचार है, बोलो क्या सुनाना चाहते हो? महाराज क्षमा करेंगे, ये सब जीवित हैं, तो फिर क्या सुनाने आए हो? महाराज कुंभकर्ण मर गया है, कुंभकर्ण मर गया है, तुम हमको मारने के लिए बात सुनाना चाहते हो? तुम शत्रु से मिले हुए हो, कुंभकर्ण तो अभी मेरे से आशीर्वाद लेकर के गया है, कुंभकर्ण मार रहा है, कुंभकर्ण मारना जानता है, कुंभकर्ण मरना नहीं जानता। नहीं महाराज, आपके लिए प्रमाण बता दें, लंका के अंदर उसका सिर आया हुआ पड़ा है, लंका के दरवाजों पर उसके हाथ आए हुए पड़े हैं। महाराज क्या बताएं, जब वो सेना के बीच में गया था उस समय में सारे बांदरों को खा खा करके बांदरों के मन में उसने बड़ा भय पैदा कर दिया था, परंतु उसके बाद बांदरों ने अपना खूब जो है तेज दिखाया और वो उस समय में राम के हाथों पड़ गया। फिर राम ने उसको अपने बाण से मार दिया और महाराज उसका सिर पर्वत के समान लंका के अंदर पड़ा है। यहाँ सारे राक्षस उसके सिर को घेरे हुए हैं, उसका धड़ समुद्र में पड़ा है, उसके हाथ और पैर ये दरवाजों के ऊपर पड़े हुए रोक दिया, दरवाजों से आना जाना सबको रोक दिया। आप खुद पधार के देख लो महाराज, जैसे कोई दावा में से जल करके राख हो जाता है, ऐसे ये कुंभकर्ण राम के बाणों से दग्ध हो गए, जल गए। ये बात सुनकर के रावण बड़ा शोक संतप्त हुआ, मोहित हो गया, गिर गया और कभी इधर कभी उधर वो हाथ पैर पटकने लग गया। देवांतक और नरांतक ये दोनों जो है रावण के बेटा, ये सब सोचने लगे कि क्या हुआ, हमारे चाचा कैसे मर सकते हैं। तृष्णा और अतिकाय इन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा चाचा नहीं मर सकता, ये बात कुछ बनावटी लगती है। महोदर और महापार्श्व भी आए, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हमारा भाई ऐसे नहीं मर सकता। थोड़ी देर में रावण को होश आया, होश आने के बाद रावण बड़ा विलाप करने लगा, अरे कुंभकर्ण, मैंने तो सुना था कि रावण के एक भाई, राम के एक भाई का नाम शत्रुघ्न है, राम का भाई शत्रुघ्न नहीं, तुम शत्रुघ्न हो, शत्रुओं का नाश करने वाले तो तुम थे, तुम हमको छोड़ करके कहां चले गए भाई, या तो उसी यम साधनम, हमको छोड़कर तुम यमलोक में कैसे चले गए, अभी तो मेरा काम तुमने अधूरा किया, मेरे मन से एक शूल थी वो शूल निकाली नहीं और तुम पहले ही मर गए। मुझे यदि ये मालूम होता कि तुमको जगाने के बाद युद्ध के अंदर मृत्यु होगी तो मैं तुमको कभी नहीं जगाता। अरे कुंभकर्ण, तू ही हमारी सेना में एकमात्र योद्धा था, तू अपने बल के अनुसार लड़ता था, हम लोगों का लड़ना और तुम्हारे लड़ने में बड़ा अंतर था कुंभकर्ण, तुम मेरी दाहिनी भुजा थे, मैं तुम्हारे ही कारण से देवताओं से अस्त्रों से कभी डरता नहीं था, मैं सोचता था कि कुंभकर्ण है तो हमें देवताओं से युद्ध करने में क्या कठिनाई है, लेकिन तुम तो भाई आज हमारा सारा अभिमान तोड़ दिए, तुम ही जब मर गए हो तो अब फिर क्या करना है, हमको भी आज जी करके क्या करना है। अरे तुम मरने से पहले कम से कम राम को तुम मार ही देते, कम से कम, और नहीं तो सुग्रीव को ही मार देते, ताकि इन बंदरों को पता चलता कि किष्कंधा का राज्य जिस राम ने सुग्रीव को दिलाया वो सुग्रीव राम के सामने मारा गया। ओहो, तुम राम के बाण से कैसे मर गए, हमको आश्चर्य होता है, तुम्हारे सामने तो इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं था, तुमने तो एरावत को पटक करके उसका दांत निकाल करके इंद्र की छाती में प्रहार किया था, वो कुंभकर्ण आज मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया। हे भैया, आज देवता आकाश में खूब आनंद मना रहे होंगे, ये ऋषि मुनि आज निर्भय होकर के अपने यहाँ स्वाहा स्वधा कर रहे होंगे, सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे, आज ये बांदरी सेना भी बहुत प्रसन्न होकर किलकारियां लगा रही है, इनका दिन है भाई, तुम्हारे मरने से आज हमारे मन में जितना दुख है उतना उनको हर्ष भी तो हो रहा है, मैं आज ही जाऊंगा, मैं युद्ध के अंदर जाकर राम के सामने मरूंगा या मारूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। हे कुंभकर्ण, तेरे बिना मैं लंका का राज्य लेकर क्या करूंगा, सीता को लेकर क्या करूंगा, तुम भाई बंधु थे तो सब कुछ था, लेकिन तुम ही नहीं हो तो मेरे पास ये भोग सामग्री क्या काम की, मैं अपने भाई को मारने वाले का नाश करूंगा, मैं अपना मरना अच्छा समझता हूँ लेकिन तुम्हारे मरने के बाद यह जीना अच्छा नहीं समझता, तुमने हमसे ये कहा था कि देखो राम के बाण से यदि मैं मर गया तो तुम भी अपनी मौत समझ लेना, तो भाई मुझे तो विश्वास था कि तुम राम को मारोगे मरोगे नहीं, लेकिन अब तो तुम्हारी बात पर विश्वास करना पड़ेगा और मुझे भी राम के हाथों से मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब यहाँ जीना चाहता भी तो नहीं। देवता हंस रहे होंगे क्योंकि देवताओं का मैंने बहुत बिगाड़ किया है। अरे कथम इंद्रम जयिष्यामि, तुम्हारे मरने पर मैं इंद्र को कैसे जीतूंगा कुंभकर्ण, ये इंद्र इस समय हंस रहा होगा, नाच रहा होगा, अरे कुंभकर्ण सभावे मैंने तुम्हारे वचन नहीं माने, उसका फल मुझे मिल गया। कुंभकर्ण विभीषण ने भी मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानी, उसका फल भी मैंने भोग लिया। एक प्यारे भाई का बिछो हो जाना ये कितने बड़े कर्मों का फल हो सकता है। न अज्ञानात् मया तस्य न गृहीतुम् महात्मनः, अज्ञान के कारण से ऐसे एक राज्य के अभिमान के कारण से मैंने बात आप लोगों की मानी नहीं, विभीषण के वचनों का निरादर किया, कुंभकर्ण तुम्हारे वचनों का निरादर किया, प्रहस्त के वचनों का निरादर किया, माल्यवान के वचन नहीं माने, तो आज ये मेरा विनाश हो गया। कुंभकर्ण तुम्हारे बिना मैं अब राक्षसों को भी कैसे मुंह दिखाऊंगा। सारे राक्षस यही कहेंगे कि अरे रावण सीता के पीछे तुमने बिचारे कुंभकर्ण जो हमारी लंका की एक बहुत बड़ी हाथी थी उसको भी तुमने नष्ट कर दिया, मैं राक्षसों को भी क्या मुंह दिखाऊंगा। ओहो मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया है। मेरा धार्मिक भाई बेचारा विभीषण वो भी मेरे द्वारा इस महल से निकाल दिया गया था। आखिर मैंने पाप किया है तो कुंभकर्ण पाप का फल तो मुझे भोगना ही ना पड़ेगा। हे कुंभकर्ण अच्छा होता कि अपन दोनों मिलकर के भोगते। नहीं नहीं कुंभकर्ण मैंने तो यूं ही दुख में कह दिया, तुम जहाँ गए हो बस पीछे के पीछे ही मैं आ रहा हूँ। मैं कुंभकर्ण तुमसे कभी अलग रह नहीं सकता, तुम जहाँ मर के जा गए हो वहीं पर मैं आ रहा हूँ। अतएव हे कुंभकर्ण तुम ऐसा मत समझना कि मैंने अपने भाई को छोड़ दिया तो भाई ने हमको छोड़ दिया। तुमने हमारे लिए प्राण लगाए तो हम भी अपने प्राण तुम्हारे पीछे लगा देंगे। इस प्रकार से वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा। रावण बहुत बुरी तरह से रोने लगा तो राक्षसों ने आकर उनको समझाया। मेघनाद वगैरह सब आए, सब ने आकर के और उनको समझाया। रावण बुरी तरह से विलाप करता है। उस रावण के पास में त्रिशरा आए। देखो त्रिशरा नाम के अब बताओ, एक तो खरदूषण त्रिशरा, तीन तो वहां थे, यहाँ भी एक त्रिशरा है। एक नाम के कई मिल जाएंगे। बांदरों में भी ऐसा ही है, राक्षसों में ऐसा ही है। तो त्रिशरा ने कहा एवं हे महाराज, बात तो यही है कि जो आप बोलते हो आपने सत्य वचन नहीं माने थे। कुंभकर्ण कितने स्पष्टवादी थे, जिसके हृदय में हितभाव होता है वो किसी का लिहाज नहीं रखता, वो साफ बात बोलता है। साफ बात बोलने का अर्थ ही यही है कि वो हमारा हितेशी है। और वो आपका छोटा भाई और हमारे बीच के चाचा जी, क्या बताएं, वो अपनी गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आप जैसे सत्पुरुष इस प्रकार से विलाप नहीं करते। थोड़ा मेरे मन में भी विचार आता है कि जो संपूर्ण त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के सामने इतना पराक्रम दिखाए थे, वो एक प्राकृत राम के साथ में कैसे हार गए पता नहीं है। इसका अर्थ यही है महाराज, इस संसार में मरना सबको पड़ता है। कितने कितने साधन हमारे पास जीने के हैं, शक्ति भी ली है, ताकत भी है, लेकिन यमराज को जीतने वाला भी मर जाता है, मौत को जीतने वाला भी मौत के अंदर चला जाता है। जीतने का एक बार जीत लिया तो क्या हुआ, दोबारा तो मरना ही पड़ा ना। हे महाराज आप क्यों चिंता करते हो, आपके पास तो ब्रह्मा जी की दी हुई एक अनुपम विलक्षण शक्ति है, उस शक्ति को आप काम में लीजिए। आपके पास कवच है और हजार गधों वाला आपके पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ रथ है, उस रथ के द्वारा आप विजय प्राप्त कर सकते हो। आपके पास में कई प्रकार के शस्त्र जो देवता और दानवों से पुष्ट वे युद्ध के द्वारा, वो आपके पास है। कामम तिष्ट महाराज, हे महाराज आप जो यहीं रहो और आप अपनी शक्ति का स्मरण करो, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। और गरुड़ ने जिस प्रकार से सर्प को खाया है उस प्रकार से मैं वानरी सेना का नाश करता हूँ, अब आप मेरा पराक्रम देखना। तृष्णा के वाक्य को सुन करके रावण कहने लगा, ठीक बात है, कभी कभी ठीक रीवी घड़े को फोड़ देती है। बेटा जाओ, तुम लोग कभी कभी हमारे मन मन बड़ा ठंडा करते हो, जाओ तुम जाओ। तीसरा के बाद तीसरा को वाक्य को सुनकर के देवान तक नारायण तक अतिका ये भी साथ में हो गए। इन्होंने कहा, नहीं महाराज, कुंभकर्ण मर गए तो हम थोड़ी मर गए, हम तो जीवित ही है ना, हम तो लड़ेंगे। ये सब रावण के बेटा बड़े माया विशारद, आकाश में दौड़ने वाले, आकाश में माया फैलाने वाले, देवताओं के घमंड को दूर करने वाले, अनेक शक्तियों से संपन्न थे वे। उस समय में युद्ध के अंदर चले जाए तो कोई उनको जीत नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग दिखाई नहीं देते, माया जानते थे। देवता, गंधर्व, किन्नर, महोरा, ये सब उनसे कांपते रहते थे। ऐसे युद्ध विशारद लोग समर भूमि के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय में बड़ी इनकी शोभा हो रही है। महाराज रावण ने इन सब पुत्रों का श्रृंगार किया और आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर इनको भेज दिया। महोदर और महापार्श्व इन दोनों भाइयों को भी रावण ने विदा किया। इस प्रकार से भाई देवांतक, नारांतक, त्रिशरा, महोदर, महापार्श्व ये सब अपने अपने साधनों के द्वारा युद्ध के अंदर निकलते हैं। युद्ध में जाने से पहले रावण को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके फिर ये प्रस्थान करते हैं। ये मन में सोचते हैं कि भाई जीवित रहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो अंतिम बार प्रणाम से। इस प्रकार से प्रणाम करने की भावना से निकले और त्रिशरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्श्व ये छह महारथी हैं। ये छह महारथी हैं, इनमें से एक जो महोदर है वो तो सुदर्शन नाम के हाथी पर बैठा है, जो कि ऐरावत कुल वाला हाथी, उस हाथी के ऊपर बैठा महोदर। उसके पास में अनेक प्रकार के शस्त्र हैं और तुनीर भी हैं। सब हाथी के वहां पर सब सामान रखा हुआ, ऊंचाई से वो युद्ध करता है, हाथी बहुत ऊंचा होता है। और तीसरा है, वो एक उत्तम घोड़ों वाले रथ में बैठा हुआ है, वो बिजली के समान चमकने वाला रथ जिसमें बड़े विचित्र विचित्र धनुष हैं और उसमें मुकुट भी रखे हुए हैं। तीसरा उन सबसे सुशोभित हुआ हुआ वहां से रवाना होता है। इसी प्रकार अतिकाय भी एक अच्छे रथ के ऊपर बैठ करके राम जी के साथ युद्ध करने के लिए बांदरी सेना की ओर प्रस्थान करता है। उसके रथ की चमक ऐसी है कि सूर्य के अंदर वो चमकता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य आकाश में है कि जमीन पर है, कुछ पता नहीं चलता है। और नरांतक था, वो एक बहुत उच्च श्रवा जैसा घोड़ा उसके ऊपर बैठ गया है और जो है उसके ऊपर बैठ करके वो बड़ी फुर्ती के साथ में भाला चलाता था। नरांतक इस प्रकार से शक्तिशाली था। देवांतक पैदल ही अपने हाथ में एक जो है घोटा ले लेकर के युद्ध करता था। इसी प्रकार से महापार्श्व भी गदा लेकर के कुबेर के समान बल वाला पैदल ही वो युद्ध करता था। इस प्रकार से कोई गजों पर, कोई हाथियों पर, कोई रथों पर बैठे हुए, कोई पैदल ही चलने वाले राक्षस लोग बांदर सेना में अंधे होकर के गिर गए हैं। इधर भाई खूब तो वे बाण चलाते हैं, खूब प्रकार के शस्त्र चलाते हैं। आज उन्होंने विचार कर लिया, मरणम वापि निश्चित्य शत्रुणाम वा पराजयम्, या तो हमको मरना है या आज शत्रुओं को पराजित करना है, बस दोनों को, दोनों ही बातें उनके खूब अच्छी तरह से बैठ गई। अब खूब गर्जना करते हैं, नाद करते हैं, शस्त्र फेंकते हैं, कोई शस्त्र पकड़ते हैं, कोई तोड़ते हैं, कोई पर्वत फेंकते हैं तो कोई पर्वतों को तोड़ते हैं। इस प्रकार से आपस में बड़ा घमासान युद्ध है, कोई भूलता नहीं है, बस केवल शस्त्रों का प्रहार हो रहा है। बंदरों की सेना को राक्षस देख करके टूट पड़ते हैं, राक्षसों की सेना देखकर बंदर टूट पड़ते हैं, हाथी घोड़े रथ वहाँ चकनाचूर हो रहे हैं। इंद्र बंदरों की सेना के सिर पूंछ और धाड़ी ये सब कट कट करके इधर उधर पड़ते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा वहाँ पर नाद हो रहा है। बानर लोग राक्षसों की मार को सह नहीं पाते हैं, अतः जो पर्वत उठाते हैं वो उसी पर्वत के पीछे बानर छिपना चाहता है। इस प्रकार से बड़ा भयंकर वहाँ पर नाद होने लगा। राक्षसों की सेना भी कम नहीं थी। अमृष्यमाणा परमहर्षमुग्रम महाबला भीमतरम प्रणेदु। राक्षसगणों को देखा कि जब बानर इस प्रकार से हारते चले जा रहे हैं तो इनका उत्साह बढ़ता चला गया। आकाश के अंदर उछल उछल करके बानर लोग जमीन पर गिर गिर करके मरते चले जा रहे हैं। राक्षसों के द्वारा जब इस प्रकार से सेना का संहार हो रहा है तो बड़े श्रेष्ठ बानर अपने हाथ में पत्थर लिए हुए, पत्थरशिला लिए हुए, अपने हाथों में पर्वत शिखर लिए हुए, अपने हाथों के अंदर बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके लेकर के चेलू पेतुश्च नेदुश्च, वे खूब जो है